Krishna. Tom Ajahn Padmaraj, Sri Chaitanya Charitamrita Sen, Antya Leela, Adhyaya 11, Haridas Thakur Ka Mahaprayam, Shlokramang 24. प्रभु कहे वृद्ध होइला संख्या अल्प कर सिद्ध देह तुम्हें साधने आग्रही के न कर प्रभु कहे वृद्ध होइला संख्या अल्प कर सिद्ध देह तुम्हें साधने अग्रह के न कर प्रभु कहे वृद्ध होइला संख्या अल्प कर सिद्ध देह तुम्हें साधने अग्रह के न कर प्रभु कहे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा वृद्ध होइला तुम वृद्ध हो चुके हो संख्या अल्प कर संख्या घटा दो सिद्ध देह तुम्हें तुम पहले ही मुक्त हो चुके हो साधने साधना अग्रह के न कर तुम क्यों उत्सुक हो अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा महाप्रभु ने कहा क्योंकि अब तुम वृद्ध हो गए हो अतः नित्य जप किए जाने की नाम संख्या घटा सकते हो तुम तो पहले से मुक्त हो अतः तुम्हें कठोरता से नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है जब तक ईश्वर के रागानुप्रेम के पद तक पहुंच न लिया जाए तब तक विधि विधानों का पालन करना चाहिए हरिदास ठाकुर इसके जीवंत प्रमाण थे कि विधि विधानों का किस तरह पालन किया जाए इसी तरह श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी जीवंत दृष्टांत थे शंकर गोस्वामी अष्टक में कहा गया है संख्या पूर्वक नाम गान नत भी कालावसानी कृतो सारे गोस्वामी भी और विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी सारे विधि विधानों का कड़ाई से पालन करते थे पहला नियम यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण इतने उच्च स्वर में किया जाए कि जपकर्ता स्वयं उसे सुन सके और निश्चित संख्या में माला जप का व्रत लिया जाए रघुनाथ दास गोस्वामी न केवल निश्चित माला का जप करते थे अपितु उन्होंने अनेक बार भगवान को नमस्कार करने का भी व्रत ले रखा था ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर द्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज श्री हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है और श्री बद्रीनाथ ठाकुर का आविर्भाव दिवस, दोनों ही हमारे संप्रदाय के बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। और ऐसे आविर्भाव और तिरुभाव दिवस पर ऐसे आचार्यों के जीवन के बारे में चर्चा करने से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार जो आचार्यगण हैं उन्होंने हमें एक आदर्श प्रस्तुत किया है और किस प्रकार हम अपने जीवन में भक्ति कर सकते हैं और अंततः जीवन को सफल बना सकते हैं। तो यहां पर इस श्लोक के पहले जो घटना हुई थी, तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद हरिदास ठाकुर के पास आते हैं कुछ जगन्नाथ महाप्रसाद लेकर। वो देखते हैं कि हरिदास ठाकुर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बहुत धीरे से धीमी आवाज में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो गोविंद कहते हैं कि कृपया करके उठिए और ये महाप्रसाद लीजिए। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आज मैं उपवास रखूंगा। तो गोविंद कहते हैं क्यों? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं क्योंकि मैंने जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो निर्धारित जप है वो पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन आपने महाप्रसाद लाया है तो इस महाप्रसाद को भी स्वीकार करना जरूरी है। तो इस प्रकार कहते हुए हरिदास ठाकुर सबसे पहले महाप्रसाद को प्रणाम करते हैं और फिर प्रणाम करके थोड़े से महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। महाप्रसाद अनियाचक ने यहां पर यह मुख्य शब्द आया है करीला बक्षना। और श्री प्रभुपाद इसको इस तात्पर्य में समझाते हैं कि किस प्रकार महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि महाप्रसाद जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए यहां पर हरिदास ठाकुर सबसे पहले प्रार्थना कहते हुए फिर प्रार्थना कहने के बाद उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो यह महाप्रसाद यह हम इंग्लिश में कहते हैं ऑनर महाप्रसाद, वी डोंट ईट, क्योंकि यह भगवान से अभिन्न है। तो उस सही चेतना से जब हम महाप्रसाद को स्वीकार करते हैं तो फिर उसका असली प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर श्री हरिदास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार महाप्रसाद को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो अगले दिन वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हरिदास सब कुछ ठीक है? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं हाँ मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। तो महाप्रभु पूछते हैं बीमारी क्या है? और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि बीमारी यह है कि मैं जो नियमित संख्या में हरिनाम का जप जो है उसको मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। श्री प्रभा जी समझाते हैं यहां पर कि अगर हम जो नियमित रूप से जो माला है हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है अगर उसको हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो वो बीमारी है, वास्तव में आध्यात्मिक बीमारी है। तो इसलिए इस तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सब गुरु का सबसे महत्वपूर्ण आदेश है नियमित रूप से 16 माला का जप करना, ये सबसे महत्वपूर्ण आदेश है गुरु का। तो हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं कि मेरी बीमारी यह है कि मैं नियमित रूप से जो मैंने व्रत लिया है उसके हिसाब से मैं हरिनाम का जप नहीं कर पा रहा हूं, यह मेरी बीमारी है। तो फिर महाप्रभु ये श्लोक कहते हैं और कहते हैं कि अभी तो आप वृद्ध हो गए, उतना नाम जप करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां पर भगवान को स्वयं बताना पड़ रहा है हरिदास ठाकुर को कि नाम जब थोड़ा कम करो, अभी इतना जप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने आसक्त थे हरिनाम के प्रति कि वो कम नहीं करना चाहते। हालांकि भगवान जो नाम से अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिनः, वही भगवान कह रहे हैं कि अभी इतना जप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर इसके नामाचार्य हैं, इतने आसक्त हैं हरिनाम के प्रति कि उस नाम जप को कम नहीं करना चाहते हैं। ऑफकोर्स बद्ध जीवात्मा के लिए तो उल्टा होता है, बताना पड़ता है, विनती करना पड़ता है, कृपया करके नाम जप कीजिए। लेकिन यहां पर हरिदास ठाकुर हालांकि भगवान बता रहे हैं, स्वयं भगवान आकर बता रहे हैं इतना जप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर अपना जो व्रत है उस व्रत को कम नहीं करना चाहते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है हरिदास ठाकुर के जीवन में से कि किस प्रकार हमें हरिनाम के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद इसके पहले किताब पर में भी समझाते हैं कि हम हरिदास ठाकुर को नकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी निर्धारित माला है, कम से कम जो 16 माला है, उसको नियमित रूप से जप करना। और किस प्रकार जप करना, श्री प्रभुपाद जी दो तात्पर्य में समझा रहे हैं किस प्रकार जप करना चाहिए। कि हम इस हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जप कर रहे हैं इसको हम ध्यान पूर्वक श्रवण कर सके, चैंटेड लाउडली सो दैट वन कैन हियर हिमसेल्फ। तो उस प्रकार जप करना चाहिए जिससे हम स्वयं उसे ठीक रूप से ध्यान पूर्वक उसे श्रवण कर पाए। तो हर एक अक्षर जो है उसको ध्यान पूर्वक जप करें और श्रवण करें। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ शॉर्टकट्स नहीं है, इसमें 16 नाम हैं और ये 16 नाम जो है हर एक नाम को स्पष्ट रूप से स्पष्ट उच्चारण और फिर ध्यान पूर्वक श्रवण, फिर इस हरिनाम का पूरा पूरा लाभ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये गोस्वामीगण जो है ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि हालांकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर कोई प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है फिर इस प्रकार संख्या पूर्वक नाम लेने की जरूरत नहीं है, नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार कड़क रूप से, लेकिन फिर भी हालांकि गोस्वामी गण पूरी तरह से प्रेम के स्तर पर थे, लेकिन फिर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो संख्या पूर्वक नाम लेते हैं और उनका भी जपमाला होता है, गिनते हैं, हालांकि ये सब जरूरी नहीं है उनके लिए, फिर भी करते हैं ताकि हम सीख सके उनके जीवन से। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपका जो कर्तव्य है इस अवतार में, वो कर्तव्य आपने पूरी तरह से निभाया है। आपने हरिनाम का प्रचार किया है और अब आपको आपका और कुछ कर्तव्य वास्तव में नहीं है इस भौतिक जगत में। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि आपका जो अवतार है तो इसका यह मतलब है कि हरिदास ठाकुर वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं और जितने भी भगवान के पार्षद होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, वो भगवान के साथ आते हैं भगवान के लीलाओं में मदद करने के लिए। और फिर से महाप्रभु कहते हैं कि कृपया करके इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है उसको कम कीजिए। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, कृपया करके मेरी निवेदन को सुनिए। और फिर श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं तो एक नीच परिवार में जन्म लिया था और मेरा जो शरीर जो है अत्यंत निंदनीय है, इसमें कोई अच्छा गुण नहीं है, मेरा जो कार्य है वो भी निंदनीय है। कहते हैं अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, जय श्री, कहते हैं कि मैं तो अदृश्य हो, अस्पृश्य हो, मैं तो देखने के लिए भी लायक नहीं हूं, स्पर्श करने के लिए भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपकी कृपा है कि आपने मुझे रौरव जैसे नरक लोक से मुझे बचाकर वैकुंठ का पद दिया है। हे भगवान, आप तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आप जिस प्रकार चाहते हो उस प्रकार आप जीवों को नचाते हो और आपने मुझे अलग अलग तरीकों से नचाया है। आपने मुझे श्राद्ध पात्र के लिए योग्य बनाया है, हालांकि मैं बिल्कुल योग्य नहीं था। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर विनम्रता से अपनी जो स्थिति है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, हालांकि हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में स्थित हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो विनम्रता है इन शब्दों से दिखा रहे हैं। तो वैष्णव जो है वो हमेशा नम्र रहते हैं। तो वैष्णव ऐसा कभी नहीं दिखाते हैं कि अभी मैं बहुत उन्नत वैष्णव बन गया। वैष्णव ऐसा कभी नहीं दिखाते कि अब मैं प्रेम के स्तर पर पहुंच गया या भाव के स्तर पर पहुंच गया, नहीं। तो जो तथाकथित भक्त होते हैं, आगे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में मैं भक्त भी नहीं हूं, मैं तो केवल भक्त आभास हूं, मैं तो केवल एक भक्त का ढोंग कर रहा हूं, इस प्रकार हरिदास ठाकुर कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो भक्त का ढोंग करते हैं, जो भक्त आभास है, वो दिखाते हैं कि मैं कितना उन्नत भक्त हूं। तो आध्यात्मिक जीवन में जो मनोवृत्ति होती है, जो साधारण भौतिक लोगों का जो मनोवृत्ति है उनसे बिल्कुल विपरीत होता है। तो जो उन्नत होते हैं भक्ति में वो नम्र होते हैं और जो वास्तव में उन्नत नहीं होते हैं और केवल ढोंग करते हैं भक्ति का, वो दिखावा करते हैं कि देखो हम कितना उन्नत हैं। तो यहां पर हम देख सकते किस प्रकार, हालांकि हरिदास ठाकुर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य का पद दिए थे, लेकिन फिर भी यहां पर नम्रता से कह रहे हैं कि वास्तव में मैं तो अयोग्य हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं थी, ये केवल आपकी कृपा थी कि आपने मुझे इस प्रकार का पद दिया है। और फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, कि मेरी एक इच्छा है बहुत समय से, बहुत जल्दी ही आप आपका जो प्रकट लीला है इसको अंत करने वाले हैं, और इसके पहले ही मैं चाहता हूं कि मैं इस देह को त्याग करूं, और मैं चाहता हूं कि अंत के समय आपके सुंदर मुखकमल को देखते हुए आपके चरण कमल को मेरे हृदय को स्पर्श करते हुए आपका नाम लेते हुए मैं इस शरीर को अंत करूं, यह मेरी इच्छा है। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर अपनी इच्छा को श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रकट करते हैं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे हरिदास, आप तो इतने महान हैं कि जरूर भगवान आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति करेंगे, लेकिन मेरी जो भी सुख है वो आपके सब के वजह से हैं। अगर आप नहीं हैं तो मैं संतुष्ट नहीं रह सकता हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार भक्तों का जो संगति है कितना महत्वपूर्ण है। तो हालांकि भगवान तो आत्माराम है, भगवान के लिए तो वैसे किसी और व्यक्ति की संगति की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का रोल निभा रहे हैं, तो इसलिए भगवान हमें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार भक्तों का जो संगति जो है कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बार जब हम भक्तों की संगति में रहते हैं तो उस संग का जो महत्व है हम नहीं समझ पाते हैं, और भक्तों का जो संगति है उसको हम सस्ता लेते हैं। और जब हम बहुत सालों तक भक्तों की संगति में रहते हैं, फिर उनके जो भी दुर्गुण है वो दिखाई पड़ता है, और फिर भक्तों का जो महत्व है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं, हालांकि स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी सुख है वो आपके संगति के वजह से है, और अगर आप नहीं है तो फिर मैं कैसे सुखी रह पाऊंगा। इस प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इस प्रकार भ्रमित स्थिति में मत डालिए, हालांकि मैं तो पूरी तरह से पतित हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कृपा दिखाया है। वास्तव में इस दुनिया में ऐसे अनेक करोड़ों लोग हैं, करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सर पर बैठने के लिए योग्य हैं, और वो सब आपके लीलाओं में मदद करेंगे। मैं तो केवल एक तुच्छ कीड़ा के समान हूं, और इस भौतिक जगत में अगर एक चींटी मर जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा। इस प्रकार हरिदास तो देखिए एक उन्नत भक्त का क्या मनोवृत्ति होती है कि हालांकि यहां स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की संगति चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर स्वयं को तुच्छ मान रहे हैं, स्वयं को केवल एक कीड़े के समान सोच रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता। बद्ध अवस्था में हमें लगता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या चल सकता है, सब बंद पड़ जाए, लेकिन यहां पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मैं तो केवल एक कीड़े के समान हूं, मेरा देहांत होने से क्या फर्क पड़ेगा इस दुनिया में। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को आलिंगन करते हुए चले जाते हैं। और फिर अगले दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात सभी भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने आते हैं। तुरंत हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं, समाचार क्या है? हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, आप जो भी कृपा प्रदान करना चाहते हैं वही सही है। और फिर तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ जोरदार हरिनाम संकीर्तन शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामनंद राय, वक्रेश्वर पंडित सभी भक्तों के साथ वहां पर नृत्य करने लगते हैं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लगते हैं, मानो उनके पांच मुख हो। इस प्रकार हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं। और हरिदास ठाकुर के उन गुणों को सुनकर सभी भक्तगण आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो सब हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हैं। और फिर हरिदास ठाकुर वहां पर उपस्थित सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमल से धूलि लेते हैं और अपने सर पर लगाते हैं। और फिर हरिदास ठाकुर वहां पर लेटकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने छाती पर रखते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुख को निहारते हुए और निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य भगवान का नाम लेते हुए उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और श्री कृष्ण चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए उनका सुंदर मुखकमल को देखते हुए श्री हरिदास ठाकुर अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं। इसको देखकर सभी भक्तगणों को भीष्मदेव का स्मरण होता है, जिस प्रकार भीष्मदेव स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग देते हैं, उसी प्रकार श्री हरिदास ठाकुर भी स्वेच्छा से भगवान की कृपा से अपने शरीर को त्यागते हैं। और जैसे ही श्री हरिदास ठाकुर अपने प्राणों को त्यागते हैं, सभी भक्तगण जो जो से भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का शरीर को लेकर अपने गोद में उनके शरीर को लेते हैं। फिर बाद में उस शरीर को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आंगन में जाकर नृत्य करने लगते हैं सभी भक्तों के साथ। और फिर कुछ समय के बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको याद दिलाते हैं कि अभी जो अंतिम क्रिया है वो करने का समय आ गया है। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर उस शरीर को लेकर स्वयं हरिनाम संकीर्तन के साथ समुद्र की ओर जाते हैं और वहां पर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उस देह को नहलाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब से आज से यह जो समुद्र जो है यह तीर्थ स्थान बन गया है और सभी भक्तगण उस जल को स्वीकार करते हैं। और जगन्नाथ महाप्रसाद चंदन महाप्रसाद हरिदास ठाकुर के शरीर पर लगाते हैं और वहां पर एक खड्डा खोदकर हरिदास ठाकुर का देह को उसमें डालते हैं और फिर उसमें भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है, चंदन, जगन्नाथ जी का जो भी कपड़ा है वो सब उसमें डाल देते हैं उस देह के साथ, और फिर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर जो भालू है, रेती है, उसमें डाल देते हैं, और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ जोरदार हरिनाम करते हैं। और यह हरिनाम जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में भर गया ऐसे जोरदार हरिनाम हुआ। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्तगण उस समुद्र में स्नान किए और फिर उस समाधि को परिक्रमा करने के बाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर जाते हैं, वहां पर खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि आज हरिदास ठाकुर का तिरभाव हुआ है, कृपया करके भिक्षा दीजिए। और जैसे ही वहां पर जो दुकानदार है वो देखते हैं कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भिक्षा मांग रहे हैं तो सभी दुकानदार जितने भी महाप्रसाद हैं सब देने लगते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आप जा सकते हैं और मैं जितना भी महाप्रसाद है वो इकट्ठा करके मैं लाता हूं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कुछ सेवकों के साथ जगन्नाथ महाप्रसाद को लाते हैं और फिर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बिठाकर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रसाद को सर्व करने लगते हैं अपने भक्तों के साथ। लेकिन कोई प्रसाद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जब तक श्री चैतन्य महापुरुष स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, कृपया करके आप बैठिए, नहीं तो कोई स्वीकार नहीं करेंगे इस प्रसाद को। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं ब्रह्मानंद भारती और अन्य गुरु भाइयों के साथ। और फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद स्वीकार करते हैं फिर अन्य वैष्णवगण उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। और जैसे सर्वर सर्व कर रहे थे महाप्रसाद, तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वर्स को कह रहे थे कि और दे दो, और दे दो, और इतना सर्विंग कर रहे थे कि जो पांच लोग खा सकते थे वो एक व्यक्ति को सर्विंग कर रहे थे। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ सभी भक्तों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और फिर सभी भक्तों को फूल की मालाएं, चंदन का लेप प्रदान करके फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्तगण वापस चले जाते हैं। तो जाने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु एक आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ने इस हरिदास ठाकुर का तिरुभाव का जो फेस्टिवल है, उत्सव है, इस उत्सव में भाग लिया है, इस उत्सव में हरिनाम लिया है, नृत्य किया है, जिन्होंने भी हरिदास ठाकुर के शरीर पर वो भालू है वो डाला है और जिन्होंने प्रसाद लिया है, सभी को भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगा। यह हरिदास ठाकुर की शक्ति है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के दिवस पर बहुत ही सुंदर उत्सव करते हैं और इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर ने बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा किया है। स्वयं अपने आदर्श से, अपने उदाहरण से उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार इस कलयुग में यह हरिनाम संकीर्तन जो है, ये युग धर्म है और इस युग धर्म को गंभीरता से लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के जीवन से यह दिखाया है कि किस प्रकार जो वैष्णव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैष्णव का संगति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि हालांकि यह हरिदास ठाकुर का तिरुभाव है, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आनंद के साथ इतना बड़ा उत्सव क्यों मनाया। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जब किसी का देहांत होता है तो लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं और बहुत ही शोक में डूब जाते हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तगण हरिनाम लेते हुए नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए जो वैष्णव हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही एक उत्सव का कारण है। वैष्णव का आविर्भाव तो जरूर एक उत्सव का कारण है, क्योंकि वो वैष्णव का संगति प्राप्त होता है, लेकिन वैष्णव का तिरोभाव जो है वो भी उत्सव का कारण है, क्योंकि वो अपने जीवन से या अपने जो तिरोभाव लीला है उसे वो दिखाते हैं कि किस प्रकार एक वैष्णव जब वो जीवित रहते हैं तो भी एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करते हैं, और जब वो अपने शरीर को त्याग देते हैं वो भी एक आदर्श रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार एक वैष्णव को अपना शरीर को त्याग देना चाहिए। तो इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर और श्री हरिदास ठाकुर इन दोनों में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जब श्री भक्तिविनोद ठाकुर 1871 में जगन्नाथपुरी जाते हैं और श्री हरिदास ठाकुर की समाधि को देखते हैं, तो श्री हरिदास ठाकुर की समाधि को देखते हुए, इस हरिदास ठाकुर की समाधि को स्मरण करते हुए श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत ही सुंदर कविता लिखते हैं। तो वो कविता जो है वो उसमें उसमें 10 स्टैंजास हैं, उसमें एक स्टैंजा जो है यह हम हमेशा इसको याद करने का प्रयास करते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। He reasons ill who tells that Vaishnavas die when thou art living still in sound. The Vaishnavas die to live and living try to spread a holy life around. तो ये भक्तिविनोद ठाकुर के शब्द हैं हरिदास ठाकुर के गुणगान में। तो हरिदास ठाकुर के समाधि को स्मरण करते हुए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ये शब्द लिखते हैं और कहते हैं कि He reasons ill who tells that Vaishnavas die. तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वैष्णव लोग मर जाते हैं तो यह सही समझावट नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव है वो हमेशा जीवित रहते हैं शब्द ध्वनि में। जो वैष्णवगण हैं वो शरीर त्याग देते हैं लेकिन फिर भी जीवित रहते हैं, और जीवित रहते हुए एक एक आध्यात्मिक जीवन को प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तो इसलिए जो वैष्णवों का आविर्भाव या तिरोभाव दोनों ही उत्सव का कारण है, क्योंकि वास्तव में वैष्णव जो है वो कभी मरते नहीं है एक साधारण व्यक्ति की तरह। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज भी हम हरिदास ठाकुर का तिरोभाव मना रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि बना रहे हैं। तो इस प्रकार हम हमेशा वैष्णव को स्मरण करते हैं और वैष्णव अपने जीवन से हमेशा के लिए प्रचार करते रहते हैं। जब हम इस प्रकार आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं तो अभी भी हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ होते हुए भी एक आदर्श वैष्णव का जीवन निभा है। श्री प्रभुपाद 1971 में श्री भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि पर लंदन में एक प्रवचन देते हैं। बहुत ही सुंदर प्रवचन है जिसको हम दोहराने का प्रयास करेंगे। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहकर एक आदर्श वैष्णव और एक आचार्य बन सकते हैं। तो हालांकि भक्तिविनोद ठाकुर एक ब्रह्मचारी नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, एक गृहस्थ थे और एक मैजिस्ट्रेट थे, लेकिन फिर भी एक आदर्श वैष्णव का जीवन निभा है। तो कोई भी व्यक्ति किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नॉय ये कृष्ण तत्ववित्त से गुरु होय। तो कोई भी व्यक्ति गृहस्थ हो सकता है, शूद्र हो सकता है, ब्रह्मचारी सन्यासी कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्ववित्त, अगर कृष्ण के बारे में जानते हैं, कृष्ण तत्व को जानते हैं, तो वो गुरु बन सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर हालांकि एक उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन फिर भी अपने जो भौतिक जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उत्तरदायित्व हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया। वास्तव में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे मैजिस्ट्रेट थे कि जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे वो भी भक्तिविनोद ठाकुर को सम्मान दे रहे थे। तो उस समय कहा जाता है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो भारतीय लोगों को इतना सम्मान नहीं देते थे, उनको तुच्छ तरीके से देखते थे, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर का जो जीवन है इतना आदर्शनीय था कि जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे वो भी भक्तिविनोद ठाकुर को सम्मान दे रहे थे। और इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर के लिए हम देख सकते हैं उनके घर से एक रेलवे लाइन बनाया उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उनके घर से, ताकि वो अपने ऑफिस को जा सके। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश सरकार के लोग हैं, वो भी भक्तिविनोद ठाकुर का जो एफिशिएंसी है, मैजिस्ट्रेट का कार्य करने के लिए जो एफिशिएंसी है वो देख रहे थे। तो इस प्रकार तो वहां पर बताया जाता है कि भक्तिविनोद ठाकुर क्योंकि एक महान वैष्णव थे तो इसलिए सभी लोग उनको आदर सम्मान दे रहे थे। और कहा जाता है कि भक्तिविनोद ठाकुर इतने निपुण थे, एक्सपर्ट थे अपने मैजिस्ट्रेट के ड्यूटीज में भी कि जो अन्य मैजिस्ट्रेट लोग बहुत समय लगाते थे जजमेंट देने के लिए, भक्तिविनोद ठाकुर कुछ ही समय, कुछ ही घंटों में वो जजमेंट देते थे। तो इतने एफिशिएंट थे, एक्सपर्ट थे, तो सभी कार्यों में भक्तिविनोद ठाकुर एक्सपर्ट थे। और श्री प्रभुपाद उस प्रवचन में जो प्रसिद्ध घटना है, बिशप सिंह किस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने ये जो ढोंगी भगवान है, इस ढोंगी भगवान को अंत किया, तो इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। तो उस समय जो भी मैजिस्ट्रेट होते थे, जगन्नाथपुरी के जो मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे, वो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मैनेजर होते थे। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर के जो भी मैनेजमेंट देखने लगे, तो उन्होंने जो भी वहां पर मैनेजमेंट जो भी कमियां थी उन सबको सुधारा। तो सभी ऑफरिंग्स टाइम पर होने लगे, जो भी आरती है वो टाइम पर होने लगी। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथ मंदिर के जो मैनेजमेंट है उसको भी ठीक किया। तो वहां पर जगन्नाथपुरी के जो राजा थे तो उन्होंने कुछ 80,000 रुपीस का कुछ उन्होंने अपने खुद के जेब में डाल दिया। तो भक्तिविनोद ठाकुर को पता चल गया कि इस प्रकार इन्होंने, ये राजा ने इस प्रकार इतना सारा, उस समय 80,000 रुपीस तो मतलब बहुत ही ज्यादा। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको सजा दिया। तो क्या सजा दिया? उन्होंने सजा दिया कि उनको हर एक दिन जो 56 भोग होता है उसको स्पॉन्सर करना है। तो ये सजा थी उनकी। तो हर रोज इतना सारा भोग स्पॉन्सर करना, तो कुछ सालों के बाद जो राजा का जो पैसा है वो पूरा खत्म हो गया। तो राजा बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने सोचा कि कुछ बदला लेना चाहिए। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे और भक्तिविनोद ठाकुर ने वो राजा का जो कार्य है वो देखने के लिए कुछ स्पाइस रखे थे, जो हमेशा देख रहे थे कि राजा क्या कर रहा है। तो वो राजा कुछ नहीं कर सका। तो इसलिए राजा ने क्या सोचा, तो राजा ने एक गुप्त तरीके से एक यज्ञ करने लगे, एक तांत्रिक यज्ञ। तो 30 दिन का यज्ञ था। तो उसका प्लान था कि इस 30 दिन का यज्ञ के बाद भक्तिविनोद ठाकुर मर जाएंगे, ये उसका प्लान था। तो 30 दिन का यज्ञ हो गया, भक्तिविनोद ठाकुर कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस यज्ञ के बाद जो राजा का पुत्र है वो मर गया। तो इस प्रकार, तो हालांकि राजा ने सोचा कि मैं बदला लूंगा, लेकिन जो राजा का पुत्र है वो मर जाता है। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ भक्तिविनोद ठाकुर को बचाते हैं। तो ऐसे क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर का जो मैनेजमेंट वो ठीक करना चाहते थे, तो इसलिए बहुत सारे शत्रु आ गए। तो जब कोई भी व्यक्ति कुछ चीज ठीक करना चाहता है तो कुछ शत्रु भी बन जाते हैं, क्योंकि सब लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि हालांकि बहुत सारे इस प्रकार शत्रु थे, लेकिन स्वयं भगवान जगन्नाथ ने बचा लिया। और अब जानते हैं कि किस प्रकार जो ढोंगी भगवान बिशकसेन जो कह रहा था कि मैं महाविष्णु हूं और अपने योगिक सिद्धियों के द्वारा बहुत सारे जादू वगैरह दिखा रहा था, तो भक्तिविनोद ठाकुर वो ऐसे ढोंगी भगवानों को अंत करना चाहते थे। और इसलिए स्वयं श्री भक्तिविनोद ठाकुर को जब यह कार्य दिया गया था तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सारे पुलिस कॉन्स्टेबल्स को लेकर बिशप सिंह को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास करते हैं। और फिर हम जानते हैं किस प्रकार, हालांकि ये बिशप सिंह बहुत सारा जादू दिखाते हैं, कुछ आग निकालते हैं अपने सर से, जो पुलिस लोग हैं वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर जबरदस्ती उसको लेकर जगन्नाथपुरी लेकर जाते हैं। और फिर ये बिशप सिंह जो है अपने यौगिक सिद्धियों के वजह से भक्तिविनोद ठाकुर के जो घर के जो भी सदस्य हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनकी पुत्री जो है बहुत बीमार हो जाती हैं। तो तभी भागवती देवी उनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि छोड़ दो इसको, देखो हम सब बीमार पड़ रहे हैं, छोड़ दो इसको। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम सब मरने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन यह ढोंगी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। ये भक्तिविनोद ठाकुर की जो दृढ़ता थी ना, हम देख सकते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर सभी प्रकार के तकलीफों को सहन करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस प्रकार के ढोंगी भगवान जो लोगों को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अंत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सही उपदेश है, इस सही उपदेश को प्रचार करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामीगण चले गए तो बहुत सारे अपसंप्रदाय शुरू हुए। तो ये पृषकसेन भी एक अपसंप्रदाय अतिवारी ये अपसंप्रदाय का एक सदस्य था। तो इस प्रकार बहुत सारे अपसंप्रदाय शुरू हुए, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर चाहते थे कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सही संदेश है वो प्रचार हो जाए। तो फिर बाद में श्री भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश को प्रचार करने के लिए बहुत सारी किताब लिखते हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं, बहुत सारे कविताओं की रचना करते हैं। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर 1896 में श्री चैतन्य महाप्रभु लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स यह किताब कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में उस यूनिवर्सिटी को बेचते हैं। तो हम जानते हैं कि वही साल 1896 में हिज डिवाइन ग्रेस इसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद का जन्म होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु का ही आयोजन है कि उनका जो संदेश है वो पूरे विश्व में फैल जाए। पृथ्वी आचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोरा नाम। तो उस संदेश को फैलाने के लिए स्वयं भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कहा गया है कि जब भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ने लगे तो तुरंत ही भक्तिविनोद ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम जागृत हुआ, अनुराग जागृत हुआ। तो कहा जाता है कि भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन में एक साधारण साधक के समान भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि भक्तिविनोद ठाकुर साधना भक्ति करके फिर धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा था कि भक्तिविनोद ठाकुर कुछ समय के लिए युवा अवस्था तक ऐसा था कि योगमाया की वजह से वो ढके हुए थे और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो विकसित नहीं हुआ था। लेकिन जैसा ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ने लगे तुरंत ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम है वो तुरंत ही जागृत हुआ। और फिर हम देखते हैं कि उस समय के बाद स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम की वजह से श्री भक्तिविनोद ठाकुर हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ने लगे, स्मरण करने लगे और फिर कविता लिखने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर को यह जो टाइटल है जो हम उनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं, प्रणाम मंत्र हम थोड़ा पढ़ेंगे, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय। तो यहां पर नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, तो ये जो टाइटल है सच्चिदानंद नामिने, ये टाइटल उनको दिया गया था क्योंकि श्री भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करने लगे और इसलिए उनको वो टाइटल दिया गया है। तो इस और बाद में बहुत सारे कविताएं श्री भक्तिविनोद ठाकुर हम जानते हैं बहुत सारे कविताएं श्री भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु और भक्ति के बारे में लिखते हैं। और साथ साथ भक्ति का जो तत्व है उसको समझाने के लिए उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैव धर्म, जो भक्ति के तत्व के बारे में श्री भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं। और फिर साथ साथ श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी, भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी, और इस प्रकार अलग अलग बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं। साथ साथ इन ग्रंथों के लिखते हुए श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने प्रचार करने लगे। और हम जानते हैं किस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर पहले आचार्य हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिकली प्रचार करते हैं नामहट के द्वारा। तो ये जो नामहट का जो कॉन्सेप्ट है भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने शुरू किया, और हम देखते हैं कि ये जो सिस्टमैटिक प्रचार जो है श्री भक्तिविनोद ठाकुर शुरू करते हैं। और स्वयं श्री भक्तिविनोद ठाकुर उस समय 500 नामहट शुरू करते हैं केवल बंगाल में, 500 नामहट। और इस प्रकार जोधा प्रचार श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने शुरू किया है। तो इस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर हम देख सकते हैं कि ये नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान के परिकर हैं, मंजरी हैं भगवान के लीलाओं में। और इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर उनका जीवन जो है बहुत ही आदर्श वैष्णव, एक आदर्श गृहस्थ के रूप में दिखाते हैं। और इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार हर एक व्यक्ति जो है किसी भी आश्रम में रहते हुए भक्ति कर सकता है, और केवल स्वयं के लिए नहीं लेकिन उत्साह के साथ प्रचार भी कर सकता है। तो हालांकि भक्तिविनोद ठाकुर के मैजिस्ट्रेट के ड्यूटीज थे, उनके कुछ 10 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो किताब लिख रहे थे, प्रचार कर रहे थे और बाकी सब ड्यूटीज भी कर रहे थे। तो इस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर का जो जीवन है बहुत ही आदर्शनीय है। और उन ऐसे महान आचार्यों के बारे में जब हम श्रवण करते हैं उनके जीवन के बारे में, और उनके जो गीत है, जो अनेक गीत उन्होंने लिखा है, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये वैदिक सिद्धांतों से अभिन्न है। जो वैदिक सिद्धांत है उन्हीं वैदिक सिद्धांतों को श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ही सरल रूप में अपने वैष्णव गीतों में प्रस्तुत किया है। और इन वैष्णव गीतों से हम जो वैदिक सिद्धांतों का जो सार है उस सार को हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार श्री भक्तिविनोद ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर के हमारे लिए बहुत ही आदर्शनीय आचार्यगण हैं, और उनके जीवन को हम और डिटेल्स में हम पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़कर हम अपने भक्तिमय जीवन में उत्साह और प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की, श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेद गौड़ भक्त वृंद की, प्रेम नंदनी।